आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती जागरूकता के बावजूद एक शोध से पता चलता है कि कार्यस्थल पर बर्नआउट यानी थकावट और मानसिक तनाव अभी भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि कार्यस्थल पर उचित प्रशिक्षण और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता के अभाव में अगले साल और ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई अपनी नौकरियों को छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। अनुमानतः करीब 3 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई अगले साल में अपनी नौकरी छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती जागरूकता, राइट टू डिस्कनेक्ट जैसे नए अधिकार और घर से काम करने के बढ़ते चलन के बावजूद शोध से पता चलता है कि कार्यस्थल पर बर्नआउट की समस्या और गंभीर होती जा रही है। तो आखिर गलती कहाँ हो रही है? एसोसिएट प्रोफेसर रॉस आइल्स, जो सुपरफ्रेंड नामक गैर लाभकारी संस्था के मुख्य अनुसंधान अधिकारी हैं, उनका कहना है कि पिछले एक दशक में बर्नआउट के स्तर में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है। उन्होंने बताया,
And when we focus in on particular industries like retail and health and education, that's actually becoming, you know, a much more important factor. In fact, it's getting worse. What we've actually seen across that 10 years of data, we've seen that awareness of workplace mental health is growing. In general, the circumstances around mental health, people's understanding, the awareness, employers' awareness of mental health, even people rating their work as being a mentally healthy place to work, while those things have, in general, increased, we actually haven't seen a huge shift in some of the outcomes like burnout over that time. So those things quite aren't shifting fast enough to keep up with the levels of burnout.
Burnout आखिर होता क्या है? विशेषज्ञों के अनुसार इसके कुछ आम लक्षण हैं, जिसमें अकेलेपन की भावना, चिड़चिड़ापन, थकान और ऊर्जा की कमी जैसे लक्षण शामिल हैं। बर्नआउट के शिकार कई लोग काम में रुचि खो देते हैं या उस काम में उनका मन नहीं लगता जिसे पहले वे बड़े चाव से करते थे। इसका न सिर्फ मानसिक असर होता है बल्कि शरीर पर भी इसका असर होता है, जिससे कभी कभी तेज सिरदर्द और बदन दर्द जैसे लक्षण सामने आते हैं और नींद में भी बाधा आने लगती है। रॉस आइल्स का कहना है कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और खुदरा क्षेत्र में बर्नआउट की दर सबसे ज्यादा दर्ज की गई है, जो मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारक है।
And in healthcare, we're able to find, I guess, a number of key risk factors that make it more likely that people are going to experience burnout symptoms. And sitting at the top of the list there is psychological distress. And so psychological distress is that generalized stress and anxiety that people experience in all aspects of their life. And so when people are experiencing high levels of psychological distress, particularly for a prolonged period, that's going to increase their burnout or the likelihood they're going to report burnout.
Allianz Australia द्वारा किए गए नए शोध से पता चलता है कि सर्वेक्षण में शामिल 5 में से 4 कर्मचारी मानते हैं कि उनका कार्यस्थल स्वस्थ कार्य आदतों या सीमाओं को लागू नहीं करता है। कर्मचारियों ने बताया कि काम का अधिक लोड, लगातार मीटिंग्स और जल्द काम खत्म करने का डेडलाइन बर्नआउट के मुख्य कारण हैं। एलियांज ऑस्ट्रेलिया के पर्सनल इंजरी विभाग के कार्यकारी महाप्रबंधक मार्क पिटमैन का कहना है कि पर्याप्त ब्रेक न लेने से तनाव बढ़ता है और बर्नआउट का खतरा भी बढ़ जाता है।
The research shows that employees are really struggling to schedule that regular personal time for themselves, and they're unable to split household responsibilities equally, and don't have a reliable network to help with routine tasks like school drop-offs. So we encourage Australians to take a proper break, set boundaries, and prioritise recovery activities such as sleep and exercise. And making these small changes can really make a difference in helping to prevent burnout.
सर्वे में शामिल लगभग 60% कर्मचारियों ने कहा कि वे कार्यस्थल पर मानसिक तनाव महसूस करते हैं। शोध में यह भी पाया गया कि कार्यस्थल पर मनोवैज्ञानिक मुआवजा दावों यानी साइकोलॉजिकल कंपनसेशन क्लेम्स की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें मानसिक तनाव और काम का दबाव दूसरा सबसे बड़ा कारण है। मार्क पिटमैन का कहना है कि कार्यस्थल कर्मचारियों को बर्नआउट से बचने में मदद करने के लिए तीन प्रमुख कदम उठा सकते हैं.
The top three solutions that are desired by employees that we've identified through the research includes better training for managers to support employee well-being, taking fewer unnecessary tasks through to the workforce, and recurring mental health days.
हालांकि व्यक्तिगत स्तर पर अपने नियोक्ता के साथ अपनी सीमाएं तय करना और आराम करना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रोफेसर रॉस ऑयल्स का कहना है कि कार्यस्थल के प्रबंधन की भी जिम्मेदारी है कि वे स्वस्थ वातावरण बनाएं. उनका कहना है कि नियमित अवकाश, कर्मचारियों को काम का बोझ एक सीमा में देना और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाने और कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ सकारात्मक, सहयोगात्मक और उत्पादक रिश्ते बनाना बेहद महत्वपूर्ण है.
While we've been making progress, we still find that less than half of Australian workers feel comfortable talking to their manager about mental health. And we find that figure hasn't shifted too much. So it's really important to have break down that stigma, and that will help prevent burnout. Possibly the most important thing, though, I think, is to deliberately think about connectedness and how to actually foster good relationships and a good working environment in the workplace. Not to just think of it happening by chance, but to actually deliberately foster opportunities for employees to connect with each other.
Monash University ke career counselor Naisat Gadani ne karyasthal par hone wale burnout ko lekar hame bataya.
देखिए शशि जी, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ मुख्य कारण की आपसे बात करना चाहूँगा. एक तो सबसे पहला है कि जब कोई एम्प्लॉई शुरू करता है नया काम या अभी काम कर रहा हो, तो अगर इसके लिए अगर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा चिंतित है तो उनको एक्सपेक्टेशंस सेट करने चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के या टीम के एक्सपेक्टेशंस क्या है मानसिक स्वास्थ्य को लेके या उनके काम करने के तरीके को लेके या फिर बर्नआउट को लेके. उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं. उसका फायदा ये होता है कि यू नो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों को पता चलता है कि ये हमारी बाउंड्रीज है, ये हमने क्लियर कट आपको एक्सपेक्टेशन बता दी है, ताकि दोनों को काम करने में थोड़ी यू नो आसानी महसूस हो. दूसरा सबसे बड़ा होता है कि एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो थोड़ा नेगोशिएट करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि सबकी जिंदगी में बदलाव आते जाते रहते हैं, ऊपर नीचे होता है. किसी की यू नो बच्चे की स्कूल चेंज हो गई, या कोई बच्चा बीमार है, या वाइफ की जॉब चेंज हो गई, तो उसकी वजह से ये होता है, या हस्बैंड की जॉब चेंज हो उसकी वजह से ये होता है कि अगर लाइफ में कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए हैं तो एम्प्लॉयर को ये जरूर याद रखना चाहिए और ऐसी प्रोएक्टिव यू नो नेगोशिएशन करनी चाहिए, ताकि एम्प्लॉई को जो उनका उत्साह होता है काम को लेके वो बरकरार रहे. तीसरी है कि उनको एम्प्लॉयज के साथ रेगुलरली चेक इन करना चाहिए कि भाई आप कैसे जा रहे हैं, आपका काम कैसे हो रहा है. जैसे यू नो एवरी वीकली चेक इन होता है, जो काम के लिए नहीं होता, सिर्फ उनकी उनके बारे में जानने के लिए कि क्या सब कुछ सही जा रहा है उनके जीवन में. क्योंकि अगर जीवन में काम के बाहर कुछ गड़बड़ हुआ है तो उसका हम सब जानते हैं कि उसका डायरेक्ट इम्पेक्ट हमारे काम पे पड़ता ही है, तो ये जानना जरूरी है. चौथा है कि यू नो एम्प्लॉयर को चाहिए, मैनेजर्स को चाहिए कि वो हमेशा देखते रहे कि कौन सा साइन है कि जिससे उनके यहाँ जो काम करते हैं वो डिसएंगेज हो रहे काम से. कभी कभी सटल साइंस होते हैं शशि जी कि तुरंत पता नहीं चलते. कभी कभी लोग यू नो आधा घंटा लेट आते हैं, या देर से रुकते हैं, या लंच आवर में वो कहीं नहीं जाते, वो डेस्क पे बैठे रहते हैं. ये सब साइंस होते हैं कि जिससे पता चलता है कि उनके जीवन में कुछ हो रहा है, शायद वो डिसएंगेज हो रहे हैं या उनके मानसिक स्वास्थ्य पे उनका असर पड़ता है. पांचवी चीज मैं रेकमेंड करूंगा कि जो सेल्फ केयर है, जो हमने शायद पोस्ट कोविड वर्ल्ड में देखा हुआ है कि भाई आप अपने अगर आप अपने आप पे पहले मास्क लगाओ ऑक्सीजन का, फिर दूसरों पे मास्क लगाओ ऑक्सीजन का, तो ये बहुत जरूरी है कि सेल्फ केयर या अपने आप की देखरेख करना उसको प्राइमरी किया जाए, ताकि अगर वो होगा तो यू नो एम्प्लॉयज जो होंगे वो खुद को अच्छा महसूस करेंगे वर्क पे आने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और शायद उनको वो मोटिवेशन भी मिलेगा कि मैं और कंपनी के लिए अच्छा कुछ काम कर पाऊँ. तो ये पांच चीजें मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है.
जब कोई एम्प्लॉय तनाव में हो तो तो उसे क्या करना चाहिए? इस बारे में नैसत गडानी का कहना है,
हर एक छोटी या बड़ी कंपनी हो उनमें एक एम्प्लॉई असिस्टेंस प्रोग्राम करके एक एडिशनल सपोर्ट उनको दिया जाता है कि ताकि आप कॉन्फिडेंशियली किसी के भी साथ अपने जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, बर्नआउट हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, उसकी बात कर पाए। और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन वो ईएपी एम्प्लॉई असिस्टेंस प्रोग्राम कंपनी जो होती है उनके साथ उनको वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ताकि अगर उनके एम्प्लॉई को जरूरत पड़े तो उनके साथ बात कर पाए। ये सबसे पहला एक पॉइंट है। दूसरा ये भी है कि अगर आप अपने कलीग से या अपने मैनेजर से अच्छा बर्ताव है आपका और आप अच्छा टीम है तो इट इज ओके कि आप अपने अपने आप जो आप फील कर रहे हो उसको ऑनेस्टली और प्रामाणिकता से के साथ आप उनके साथ बात कीजिए। और अगर नहीं लगता है कि वो प्रामाणिकता नहीं आ रही है तो मैंने आपको जैसे बताया ईएपी प्रोग्राम जो है वो सबसे बेस्ट है।
SBS न्यूज की सिडनी लैंग की इस स्टोरी को SBS हिंदी के लिए प्रस्तुत किया शशि कुमार ने।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।